दुनिया जहान। पानी में छप छप चिलचिलाती गर्मी में इससे ज्यादा मस्ती और भला कैसे हो सकती है। कूड़ेदान के बड़े से डिब्बे में भरा है ये पानी और इसमें छप छप करने वाले ये बच्चे बेशक अभी दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में एक झुग्गी बस्ती में रहते हैं, लेकिन ये और इनके माता पिता लंबा सफर तय करके बर्मा से दिल्ली तक पहुंचे हैं। ये बस्ती है रोहिंग्या मुसलमानों की। संयुक्त राष्ट्र रोहिंग्या मुसलमानों को दुनिया के सबसे प्रताड़ित लोगों का नाम देता है। रोहिंग्या लोग मुख्य रूप से बर्मा के पश्चिमी रखाइन प्रांत में रहते हैं, लेकिन वहां की सरकार ने इन्हें कभी अपना नागरिक नहीं माना। उसके लिए ये बस बांग्लादेशी प्रवासी रहे हैं। रोहिंग्या लोगों को बर्मा में न तो जमीन जायदाद रखने का हक है और न ही बेरोक टोक कहीं आने जाने का। उन्हें पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं है। इन लोगों पर बहुसंख्यक बौद्ध लोगों के अत्याचारों की खबरें अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आती रहती हैं। जोहरा बेगम 5 साल पहले बर्मा से भारत आई और बर्मा के बौद्ध लोगों को वो सांप से भी खतरनाक बताती हैं।
वो तो जानवर की तरफ से बेहतर भी है, जानवर भी फिर भी मतलब रास्ते में सांप भी आगे सामने हुए तो सांप भी अगर काटने को सांप के सामने अगर काटने के टाइम खड़ा हो तो हम सीधा इंसान भी खड़ा है तो सांप भी आराम से निकल जाती है, मगर सांप से भी खतरा है हमारे जो देश में।
रखाइन प्रांत में 2012 में बड़े दंगे हुए। वजह थी एक बौद्ध महिला का बलात्कार और उसके बाद उसकी हत्या। इसके इल्जाम लगे 3 रोहिंग्या मुसलमानों पर। पूरे रखाइन प्रांत में दंगे हुए जिनमें लगभग 200 लोगों की मौत हुई और हजारों बेघर हो गए। फिर मार्च 2013, अगस्त 2013, जनवरी 2014 और जून 2014 में भी वहां दंगे हुए और मरने वालों में ज्यादातर रोहिंग्या मुसलमान ही थे। अब्दुल शकूर भी कालिंदी कुंज की इसी झुग्गी बस्ती में रहते हैं। वो बताते हैं
तो बहुत बहुत हजार हजार कुटी कुटे लग बच्चा को भी खत्म कर दिया, मार डाल दिया। इनके बाद जान बचाने के लिए बांग्लादेश में या बांग्लादेश से हिंदुस्तान आया, हिंदुस्तान आराम से भी रह सकता है।
जोहरा बेगम कहती हैं कि बर्मा में ना तो सरकार उनकी है और ना ही पुलिस, तो फिर हिफाजत कौन करेगा।
इतना जो जुल्म चलता है, घर में जवान लड़की है, रात को 2-3 बजे पुलिस वाला जाता है, अगर उधर अच्छा लड़की देख लिया तो उनको रेप लेती है, तो हम मतलब सरकार को हाथ उठा के बात भी नहीं कर सकता। जो उठा के बात किया उनको सीधा 10-15-20 साल जेल में डाल लेती है, फिर वो जिंदे भी ऐसा सामने गोली भी मार देती है, चाकू भी मार देती है, यही है।
हजारों की तादाद में रोहिंग्या लोग बर्मा छोड़ रहे हैं। हालात यह है कि वो नौकाओं पर सवार होकर समंदर में तो निकल पड़ते हैं, लेकिन कोई भी देश उन्हें अपने यहाँ आने देने को तैयार नहीं है। इस वक्त भी हजारों लोग यूं ही समंदर में फंसे हुए हैं। बहुत से रोहिंग्या ये सोचकर मलेशिया और इंडोनेशिया का रुख करते हैं कि मुस्लिम देश होने के नाते वहां उन्हें आसरा मिल जाएगा, लेकिन हमदर्दी के सिवा कुछ नहीं मिलता। मलेशिया के पेनांग में रहने वाले पत्रकार सचिन गौड़ कहते हैं,
एक मुस्लिम देश होने के नाते हाँ, जो रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जो बर्ताव बर्मा में हो रहा है उसको देखकर एक जरूर सहानुभूति का भाव है, लेकिन जब वो अपने देश अपनी जमीन पर जब वो अप्रवासी आते हैं तो फिर समस्या दूसरी हो जाती है। वहां पर फिर एक तनाव दूसरी तरह का होता है कि हम सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सेवाओं में या नौकरियों में अपने लोगों को, मलेशिया के लोगों को नौकरी दें या फिर रोहिंग्या मुसलमानों को। और इसी वजह से मलेशिया की सरकार ने बार बार ये स्पष्ट किया है कि हम उन्हें शरणार्थियों का दर्जा नहीं दे रहे हैं, हम संयुक्त राष्ट्र की संधि पर भी हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं।
इसी तरह की हमदर्दी रोहिंग्या लोगों को लेकर इंडोनेशिया भी दिखाता है और कुछ मदद भी करना चाहता है, लेकिन अपने यहाँ इन्हें बसाने को वो भी तैयार नहीं है। थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी रोहिंग्या लोगों के लिए अपने दरवाजे बंद किए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी अबट अपने रुख पर कायम हैं।
नौकाओं पर सवार होकर आने वाले लोगों को यहाँ बसाने का विचार मानवीय तस्करी को बढ़ावा देना होगा।
बहुत से लोगों के लिए यह सफर जानलेवा होता है। कईयों की नौकाएं डूब जाती हैं तो कुछ बीमारियों की भेंट चढ़ जाते हैं, तो कई इंसानी तस्करी करने वालों के हत्थे चढ़ जाते हैं। पिछले दिनों ही मलेशिया की पुलिस को लगभग 140 कब्रें मिली हैं। ये कब्रें ऐसे प्रवासियों की हो सकती हैं जिन्हें गैर कानूनी तरीके से दूसरे देशों में भेजा जा रहा था।
ABCDEFG
संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी का कहना है कि भारत में 8,000 से ज्यादा रोहिंग्या लोग देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। नियमित रूप से काम न मिलना, बच्चों का स्कूल में दाखिला न होना और रहने की स्थायी जगह न होना, ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनसे रोहिंग्या लोग यहाँ दो चार होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें यहाँ रहने पर सुकून है। कभी बर्मा जाने की बात पर अब्दुल शकूर कहते हैं,
अरे बर्मा जाएंगे जब हिंदुस्तान जिस तरीके से चलाता है ना प्रधानमंत्री, हमारे देश में भी ऐसा चलाएगा ना तब भी जाएंगे, अगर ऐसी हालत में जाएंगे ना हमको भी मारा डालेगा।
अब्दुल शकूर अब यहीं मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखकर अपनी दुकान खोलना चाहते हैं, जबकि जोहरा बेगम चाहती हैं कि उनके बच्चे भी यहीं रहकर पढ़ लिख जाएं। अशोक कुमार, BBC दिल्ली।